हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। प्रीति हैरान थी कि माँ के मुकाबले आयुष्मान बच्चे की हरकतों और प्रतिक्रियाओं को बेहतर समझता था। आयुष्मान ने अपना काम पूरा करने के बाद प्रीति की ओर देखा और कहा, तुम इसे संभालो, मैं नहा कर आता हूँ। प्रीति ने सिर हिलाया और बच्चे के पास गई। आयुष्मान ने गंदा डायपर और बेबी वाइप्स डस्टबिन में डाल दिए। हाथ धोने के बाद उसने अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। नहाकर जब वो बाहर आया तो उसका बेटा फिर सो रहा था। वो छोटा था इसलिए ज्यादातर सोता ही रहता था। प्रीति बैग का सामान अलमारी में सेट कर रही थी। आयुष्मान भी उसकी मदद करने लगा। कुछ देर में दोनों ने मिलकर सारा सामान अनपैक कर लिया। फिर साथ में नाश्ता करने के बाद प्रीति बच्चे के पास गई और आयुष्मान किचन का काम समेटने लगा। इतने में मेड भी आ गई और सफाई में लग गई। दोपहर का वक्त था। आयुष्मान, प्रीति और उनका बच्चा बालकनी में थे। बच्चा धूप सेक रहा था। प्रीति उसके पास फर्श पर बिछे गद्दे पर बैठी थी और आयुष्मान काउच पर बैठकर उसके सर में तेल लगाकर मालिश कर रहा था। बच्चे के बाद से प्रीति खुद पर ध्यान नहीं दे पाती थी। उसके बाल रूखे हो गए थे और सर भी दर्द कर रहा था, इसलिए आयुष्मान उसकी ऑयल मसाज करने लगा। प्रीति आंखें बंद किए अपने बालों में घूमती आयुष्मान की उंगलियों के स्पर्श का एहसास कर रही थी। चेहरे पर सुकून और अधरों पर मुस्कान उसकी खुशी बयां कर रही थी। आयुष्मान ने अच्छे से उसकी चंपी की। जैसे ही उसने कंघी उठाई, उनके बेटे ने रोना शुरू कर दिया। प्रीति ने हड़बड़ाहट में आंखें खोली और अपने बेटे को देखा, जो आंखें बंद किए रो रहा था। मतलब उसे नींद आ रही थी, इसलिए वो आंखें नहीं खोलना चाहता था। आयुष्मान समझ गया और कंघी टेबल पर रखकर बोला, भूख लगी है इसे, तुम इसे दूध पिला दो, मैं तब तक मामी से बात कर लूं। प्रीति ने सिर हिलाया और अपने बेटे को गोद में उठाकर सीने से लगा लिया। आयुष्मान कमरे में गया। उसने तेल से सने हाथ धोए और गरिमा जी को फोन लगाया। दोपहर का वक्त था। गरिमा जी वर्षा और उसके बेटे के साथ छत पर धूप सेक रही थीं। वो बच्चे के साथ खेल रही थीं जब उनका फोन बज उठा। स्क्रीन पर आयुष देखकर वो थोड़ी परेशान हुई। उन्होंने बच्चे को वर्षा को पकड़ाया और फोन उठाकर अलग चली गईं। हेलो बेटा, कैसे हो? प्रीति कैसी है? और हमारा नन्हा राजकुमार कैसा है? वहाँ सब ठीक है ना? नमस्ते मामी, यहाँ सब ठीक है, प्रीति और बच्चा भी ठीक हैं। हम कल शाम को ही गुड़गांव वाले घर लौट आए थे, आयुष्मान ने सहजता से जवाब दिया। पर उसके गुड़गांव जाने की बात सुनकर गरिमा जी चौंक गईं और हैरानगी से बोलीं, आप कल ही गुड़गांव चले गए? बस एक ही दिन अमृतसर में रुके, कुछ हुआ तो नहीं बेटा? गरिमा जी को परेशान देखकर आयुष्मान ने उन्हें कुछ नहीं बताया और मुस्कुराकर बोला, नहीं मामी, वहाँ सब ठीक है। वो मैं अचानक यहाँ से चला गया था तो काम पेंडिंग था, इसलिए वापस आना पड़ा। चिंता वाली कोई बात नहीं, गरिमा जी ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, प्रीति कैसी है बेटा? उनसे बात करवा दीजिए और हमारे पोते को भी दिखा दीजिए हमें। प्रीति अभी उसे दूध पिला रही है मामी, बाद में बात करवा दूंगा आपकी उससे। अच्छी बात है बेटा, ध्यान रखिएगा उनका और बच्चे का। जी मामी, आयुष्मान ने हामी भरी। फिर थोड़ा रुककर बोला, मामी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। कहिए ना बेटा, क्या बताना है आपको हमसे? गरिमा जी के कहने पर आयुष्मान बोलने लगा, पर उससे पहले ही उसे दूसरे तरफ से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ें सुनाई दी, जिसे सुनकर आयुष्मान चौंक गया और हैरानगी से बोला, मामी ये बच्चे की आवाज़ कहाँ से आ रही है? आयुष्मान के सवाल से गरिमा जी के चेहरे पर चिंता छा गई। उन्होंने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, वो बेटा, हॉस्पिटल में हमने वर्षा को देखा था, उनके भी बेटा हुआ है, पर बच्चा और वर्षा दोनों ही बहुत कमज़ोर हैं। बच्चा बीमार भी था और वहाँ बच्चे और वर्षा का ध्यान रखने के लिए कोई नहीं था, तो कुछ दिनों के लिए हमने उन्हें यहाँ रहने दिया है। उन्हीं के बेटे के रोने की आवाज़ें आ रही हैं। गरिमा जी की बात सुनकर आयुष्मान को गहरा धक्का लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी प्रेम को माफ़ करके वो उसे, उसकी पत्नी और उसके बच्चे को अपना लेंगी। एक पल उसे उनसे पूछने का मन हुआ कि क्या उनके लिए ये इतना आसान है, पर वो हिम्मत नहीं जुटा सका क्योंकि अपने सवाल से उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। आयुष्मान समझ नहीं पाया क्या कहे, इसीलिए चुप रह गया, पर उसके चेहरे पर नाराजगी और निराशा साफ दिख रही थी। कुछ देर खामोशी रही, फिर गरिमा जी ने सकुचाते हुए पूछा, बेटा आपको कुछ बात करनी थी हमसे? आयुष्मान ने गहरी सांस छोड़ी और बिना किसी भाव के बोला, हाँ मामी, वो यहाँ प्रीति अकेली है, तो मैंने सोचा था कि कुछ दिन के लिए अगर आप यहाँ आ जाती तो उसका और बच्चे का ठीक से ध्यान रख लेती। आयुष्मान ने कह तो दिया, पर खुद जानता था कि यहाँ से उसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जैसा उसे उम्मीद थी वही हुआ। उसकी बात सुनकर गरिमा जी धर्म संकट में पड़ गईं और परेशान स्वर में बोली, बेटा हम आ तो जाते, पर अब हमने वर्षा को यहाँ बुला लिया है, ऐसे में हमारा यहाँ से जा पाना मुमकिन नहीं है, इसलिए हम अभी नहीं आ सकेंगे बेटा, पर जैसे ही वर्षा यहाँ से जाती है हम आ जाएंगे वहाँ। उनकी बात सुनकर आयुष्मान फीका सा मुस्कुरा दिया, इट्स ओके मामी, हम मैनेज कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अपना बच्चे और प्रीति का ध्यान रखिएगा बेटा। जी मामी, आयुष्मान ने हामी भरी और फोन काट दिया। गरिमा जी उसकी आवाज में उदासी भांप गई थी और समझ गई थी कि आयुष्मान को बुरा लगा है, पर अपने स्वभाव के अनुसार वो कुछ कहेगा नहीं। अब उन्हें अपने फैसले पर शर्मिंदगी होने लगी थी। आयुष्मान को सच में बुरा लगा था। जिस आदमी ने प्रीति के साथ इतना गलत किया, उसके बच्चे को खून देने से मना कर दिया, उसे गरिमा जी ने इतनी आसानी से माफ कर दिया, ये बात उसे तकलीफ दे रही थी। पर उसने अपनी तकलीफ, अपने दर्द को अपने सीने में दबा लिया और लबों पर झूठी मुस्कान सजाए बालकनी की ओर बढ़ गया।